بسم الله الرحمن الرحیم. ہر سال بہت سے احباب چونکہ بیعت ہونا بھی چاہتے ہیں، پہلے تو یہ ہوتا رہا کہ ان کو وہاں معتکف کے پاس ملا کر کے بیعت کر لیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے حضرات جو چاہتے تھے اور ان کو پتہ نہیں چل پاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو پاتے تھے، بعد میں ان کی طرف سے شکایت اور شکوہ رہتا تھا. حضرات منتظمین کے مشورے سے یہ گزشتہ سال سے طے ہوا کہ اس وقت کے پروگرام میں ایک دن اس کے لیے بھی ہونا چاہیے. اسی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا. سب سے پہلے تو جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں ان کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض ہے. ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ ہمیشہ بوقت بیعت ان دو باتوں کا خاص اعلان فرماتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی جو پہلے سے مشائق حقہ میں سے کسی سے بیعت ہیں اور وہ ان کے شیخ موجود ہیں، حیات ہیں، تو وہ بیعت نہ ہوں. بعضوں کی عادت ہوتی ہے جہاں بیعت کی کوئی مجلس ہو گئی جو ہے وہاں پہنچ گئے اور بیعت ہو گئے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لطیفے کے طور پر سنایا کرتے تھے کہ بھائی ایک صاحب کہا کرتے تھے میں اتنے بزرگوں سے بیعت ہوں. بھائی یہ کوئی ایسا یہ نہیں ہے، بہرحال یہ کوئی علم کی تلمذ اور شاگردی نہیں ہے کہ اتنے اساتذہ میرے. یہاں تو ایک ایسا تعلق ہے جس میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں ہونی چاہیے. توحید مطلب ایک خاص اصطلاح ہے صوفیہ کے یہاں، جس کے اندر یہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ جس سے بیعت ہیں آپ کے دل میں یہی خیال ہو کہ مجھے جو کچھ بھی فائدہ پہنچنا ہے اسی سے پہنچے گا. کیسے دنیا میں اس سے بھی بڑے بڑے باصلاحیت اور اونچے درجے کے لوگ ہیں، لیکن بہرحال میں نے جب اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے تو اب مجھے اس کے واسطے سے اللہ عطا فرمائیں گے. جیسے ایک عورت ہے نا، مثال تو ذرا یہ ہے لیکن عام حضرت صوفی اقبال صاحب نے بھی یہی مثال دی ہے. تو بہرحال ایک عورت کا نکاح ہوا ہے تو ظاہر ہے اس عورت کو بچہ کس سے ملے گا؟ شوہر سے. اس کے شوہر سے بڑھیا بڑھیا لوگ دنیا میں اونچے درجے کے اور بہت کچھ ہیں، لیکن اس کو بچہ اگر چاہیے تو اسی شوہر سے ملے گا. اسی طریقے سے جس نے بیعت کا تعلق کسی کے ساتھ قائم کیا ہے تو جو کچھ بھی ملنے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اسی نسبت پر اسی کے واسطے سے ملے گا. پہلے بھی میں بتلا چکا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، کہ اصل تو کرنے والی ذات، دینے والی ذات، سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا کہ چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا. میں نے پہلے مثال دی تھی، کسی کو دودھ چاہیے تو وہ کس سے حاصل کرے گا؟ بھینس سے، بکری سے، گائے سے. یہی تین جانور ہیں جن سے عام طور پر دودھ کیا کیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے. گویا دودھ کے لیے سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو. اب کوئی آدمی اسے تھے یہ بکری کیا حیثیت رکھتی ہے اور یہ کالی کالی بھینس، اس کو کون پوچھتا ہے، میں تو شیرنی سے دودھ لوں گا. اب شیرنی سے دودھ ملتا ہو تو لے لو، شیرنی اپنی جگہ پر کتنی بہادر صحیح، لیکن دودھ تو آپ کو گائے سے اور بھینس سے ہی لینا پڑے گا. تو ہمارا کہنے کا حاصل یہ ہے، ہر چیز کا آم، آم کا ایک پھل ہے، وہ پھل آپ کو آم کے درخت سے ہی ملے گا، کسی دوسری جگہ سے نہیں ملے گا. اسی یہ علوم جو ہیں اساتذہ سے جو حاصل کیے جاتے ہیں، ان سے ان کی شاگردی حاصل بنا گویا اختیار کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کے حاصل کرنے کے لیے دار الاسباب کے اندر استاد کو کیا بنایا؟ سبب بنایا. ان کے قلوب کے واسطے سے تلامذہ کے قلوب کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے علوم کا فیضان ہوتا ہے. دینے والی ذات اللہ. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ. کون فرماتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں کوئی چیز ان کو دوں کہ بھائی بانٹ دو سب کو، सबको बांट रहे हैं, सबके हाथ में पहुंच रही है इनके हाथ से, सब देख रहे हैं कि इसने मुझे दी, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि मैंने उनको कहा मेरे देने को, वो बांट रहे हैं। बांटने वाले ये हैं, देने वाला मैं हूं। एक मिसाल मैंने आपको बताई, तो हर दुनिया के अंदर ये जो असबाब अल्लाह तआला ने बनाए हैं, तो ये दरअसल ये है कि देने वाली जात अल्लाह की, इल्म भी अल्लाह ही देते हैं, लेकिन वास्ता अल्लाह ताला ने असातिदा को बनाया। और अल्लाह का जो निज़ाम तकवीनी है, जो आदमी उस निज़ाम से हटकर के कोई चीज़ हासिल करना चाहे वो हासिल हो सकती नहीं। इसी तरह ये रूहानी सिलसिला जो है, जो वो फ्यूज़ जो है अल्लाह ताला मशाइख के जरिए से, जिसके हाथ पर बैत की गई है, शेख के वास्ते से अल्लाह ताला रूहानी फ्यूज़ अता फरमाते हैं, गोया ये भी एक गोया है दारुल असबाब का जो निज़ाम अल्लाह ताला ने कायम किया है, उसका एक हिस्सा है। हमारे हजरत शेख ने वहाँ आबिती में अपने शेख हजरत मौलाना खलील अहमद साहब नवरल्ला मरकदहू का मकूला नकल किया है कि मेरी मिसाल तो नलके किसी है, नलका है ना, वो हैंडपम्प होता है ना, हैंडपम्प, आदमी हैंडपम्प चलाता है तो पानी मिलता है। सारी दुनिया जानती है कि ये हैंडपम्प पानी नहीं देता, पानी तो आता है कहाँ से, अंदर से, ज़मीन के अंदर पानी के सोते हैं जो अल्लाह ताला ने वहाँ पैदा फरमा रखे हैं, पानी वहाँ से आता है, लेकिन ये हैंडपम्प जो है उसके लिए वास्ता है, उसके बगैर आपको पानी मिलेगा नहीं। तो इसी तरीके से देने वाली जात अल्लाह की, जो फैज भी आपको पहुँचेगा, जो कुछ मिलेगा अल्लाह ताला ही देगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया है, तो ये रूहानी गोया फवाइद और फ्यूज को हासिल करने के लिए मशाइख को, गोया जो है पीरों को, मुर्शिद को, उसका क्या बनाया है, वास्ता बनाया। इसीलिए एक जुमला है, पीर मन खसस एतिकाद मन बसस, मेरा पीर तिनका है लेकिन मेरा एतिकाद मेरे लिए काफ़ी। आपके दिल में ये होना चाहिए पूरा जज्म कि मुझे जो कुछ भी मिलेगा इससे ही मिलेगा, सारी दुनिया कहती है तो ऐसा ही है जैसा भी हो, लेकिन अल्लाह ताला मुझे इससे। आपके दिल में अगर अकीदत है, मोहब्बत है और यकीन है, तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए से आपको नवाज देंगे। और यहाँ तक के जो है अल्लाह ताला, हज़रत शेख ने वाकया बयान किया है कि एक डाकू था, जब तक के जवानी थी, कुव्वत थी, डाका डालता रहा, काम चलता रहा, बुढ़ापा आया तब ताकत तो रही नहीं, डाका किस बुनियाद पर डालेगा, उसने सोचा कि अब कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, अब क्या तरीका है। किसी ने बताया कि ये बहुत आसान तरीका है, पीर बन के बैठ जाओ, बैठो, बैठे बैठे हजिए आते रहेंगे और खाते पीते रहो, तो बहुत अच्छा है कि नहीं। चुनांचे वो बन गया पीर, दूसरी जगह जाकर लोगों को मालूम भी नहीं था कि ये डाकू। बहरहाल बहुत से लोग आकर के उसके साथ जुड़े और उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, और अल्लाह ताला ने उसके साथ जुड़ने के बाद भी उन लोगों को उनकी अकीदत और उनके इसकी वजह से ऐसा नवाजा कि अल्लाह ने उनको ऊँचे ऊँचे मकाम अता फरमाया। एक मरतबा ये सब मुरीद जो इसके थे और जिसकी वजह से इनको ऊँचे ऊँचे मकाम हासिल हुए थे, वो आपस में कहने लगे कि हम जो है हमने बहुत से मशाइख, वो मशाइख जो हैं अपने जो इसके ज़रिए से रूहानी जो है इस तवज्जो के ज़रिए से मकामात का भी इदराक करते हैं, बता सर कौन के किस दर्जे के ऊपर है। हमने सब लोग, हमारे शेख कौन से दर्जे पर है पता ही नहीं चलता, इतना ऊंचा दर्जा है कि हमारे इल्म में नहीं आता। एक मतलब सब मिल करके जो है अपने शेख की खिदमत में हाजिर, हजरत हमने बहुत जो है मराकबा किया और ये किया, लेकिन आपके मकाम का पता ही नहीं चला। ये सुना तो फिर वो रोने लगा, भाइयों में तो कुछ नहीं, मेरा तो ये हाल है, अब तो जब अल्लाह ताला ने तुमको नवाज ही दिया है मेरी वजह से, मेरी वास्ते से, तब तुम दुआ करो अल्लाह ताला मुझे भी बनाओ। तो हकीकत तो ये है कि जो इनसे बैत हुआ जाता है उनको भी यही समझना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बल्कि देने वाली ज़ात अल्लाह की, अल्लाह इनके गोया हुस्न ज़न, हुस्न नीयत, हुस्न तलब और उनकी अकीदत की वजह से अल्लाह अता फरमाएगा, ये तो वास्ता है। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि आने वालों की कदमों की खाक को मैं अपनी आँखों का सुरमा समझता हूँ, वह इन्हीं की सदक़े में अल्लाह ताला मुझे नवाजते हैं। तो बहरहाल कहने का हासिल यह है कि एक सिलसिला है, वह जैसे ज़ाहिरी उलूम हैं जो اساتذہ کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، یہ باطنی فیوز جو ہیں وہ مشائخ کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں. یہ بیت وہ ایک طریقہ ہے. تو میں تو یہ اعلان کہنے جا رہا تھا کہ ہمارے شیخ ایک اعلان تو یہ فرماتے تھے کہ جو پہلے سے کسی کے ساتھ بیت ہو وہ بیت نہ ہو ہم سے، ہو جو جس سے بیت ہوا ہے وہ مشائخ حق میں سے اور وہ موجود بھی ہے، موجود نہ ہو ان کا انتقال ہو گیا ہو تو بیت کی تجدید کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بھائی دیکھا دیکھی اور خامخواہ کسی کے کہنے سے بیت ہونے کی ضرورت نہیں، خود ہی کچھ عمل کا اپنے اندر کیا ہے، تقاضا ہے، دل کے اندر ایک جذبہ ہے کہ بھائی میں اللہ کا راہ پر چلنے لگوں، تو اگر یہ ہو تو اس وقت بیت ہو تاکہ اس بیت کی وجہ سے کچھ فائدہ بھی اٹھایا جا سکے. اور جو ہے ہمارے حضرت ایک مرد اعلان یہ بھی فرماتے تھے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، کہ بھائی میں تو لبے گور ہوں، پاؤں قبر میں لٹکائے بیٹھا ہوں، دوسرے لوگ ہیں پتہ نہیں کب تک زندہ رہوں گا. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں بھی لبے گور ہوں، پتہ نہیں کب موت آ جائے. اسے ویسے تو مناسب یہی ہے کہ جو ہے جو دوسرے نوجوان ہیں اور ان سے آپ بیت کا اپنا رشتہ قائم کریں. خیر بہرحال یہ تین چیزیں سننے کے بعد اب جو ہے جو لوگ بیت ہونا چاہتے ہیں وہ میں پہلے خطبہ پڑھوں گا اور خطبہ پڑھنے کے بعد بیت کے الفاظ کہلواؤں گا. تو جو لوگ بھی بیت ہونا چاہتے ہیں وہ ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کریں. پہلے سے جو بیت ہو چکے ہیں وہ بھی کوئی کہنا چاہیں تجدید کی نیت سے تو یہ بھی سلسلہ یہ بھی درست ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے. توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، اور ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا، اور عہد کیا ہم نے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے۔ یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضا مندی کی، اور اپنے پاک رسول کی تابے داری کی۔ بس دیکھو یہ ہو گئے بیت۔ اب جو باتیں میں پیش کروں ان کو توجہ اور دھیان سے سنو۔ بیت ہونے کا مطلب اور خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنے میں، آج تک ہم سے جو غفلت اور کوتاہی ہوئی اس سے توبہ، اور آئندہ ایسی غفلت اور کوتاہی نہیں کریں گے، اس کا عہد و پیمان اور وعدہ۔ گویا یہ بیعت آپ کی پچھلی یعنی گزری ہوئی زندگی کے حق میں توبہ ہے، اور آنے والی زندگی کے حق میں ایک طرح کا معاہدہ اور وعدہ ہے۔ توبہ میں تین چیزیں ہوتی ہے، پہلے بتلا دیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے، گناہ پر قائم اور باقی رہتے ہوئے توبہ ہو سکتی نہیں۔ نمبر دو، اب تک جو گناہ ہوئے ان کے متعلق دل میں ندامت پچھتاوا ہو کہ ہائے کس بڑی ذات کی میں نے نافرمانی کی، اور نمبر تین، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ یہ تین چیزیں تو ہر توبہ کے اندر ضروری ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یا بندوں میں سے کسی کا کوئی حق ضائع ہوتا ہے، تو جو ہے اس کی وجہ سے جو نقص ہوا، کمی آئی، توبہ کے بعد اس کی تلافی بھی کر لینا ضروری ہے۔ اس کے بغیر توبہ گویا قابل قبول اور معتبر نہیں ہوگی۔ یہ گویا یہ چوتھی شرط جو ہے وہ ہر توبہ میں نہیں، انہی گناہوں کے اندر جہاں اس گناہ کی وجہ سے کچھ حق ضائع ہوا ہو، کمی آئی ہو۔ تو اگر کسی کا حق ضائع نہیں ہوا، ایک آدمی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی، بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی حق ضائع نہیں ہوا، تو اب جب وہ توبہ کرے گا تو اس توبہ کے اندر تین ہی کام پہلے جو بتلا دیے کافی ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اللہ کے حضور جو ہے اس نے اللہ کے سامنے اپنے اس گناہ کے اوپر، گناہ کو چھوڑ کر اللہ سے عہدہ کر لیا کہ میں گناہ آئندہ نہیں کروں گا، اور دل میں ندامت ہے، ہو گیا، ہو گئی توبہ۔ لیکن اگر کوئی گناہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی حق ضائع ہوا تھا، جیسے نماز نہیں پڑھا، پانچ وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے، اللہ کا حق ہے، اگر ہم نے چھوڑ دی تو یہ گناہ ہوا نماز نہ پڑھنا۔ اب توبہ کریں گے تو توبہ کی وجہ سے جو ہے اب یہ جو نماز چھوٹی ہے وہ تو بہرحال اپنے ذمے پر کیا رہے گی؟ باقی رہے گی، جب تک کہ اس کو ادا نہ کر لیں، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ کسی کا پیسہ آپ نے دبا لیا، کسی کو اوپر تہمت لگائی، تو اب پیسہ لے لیا ہے، तौबा करेंगे तो वो जो पैसा है वो तो अदा करना पड़ेगा। तोहमत लगाकर जो उसको आपने नुकसान पहुंचाया है, तकलीफ पहुंचाई है, उससे उसकी क्या करनी पड़ेगी, माफ़ी मांग करके माफ़ कराना पड़ेगा। उसके बगैर आपकी ये तौबा जो है मुकम्मल होने वाली नहीं है। गोया तौबा का को तकमील तक पहुंचाने वाला ये चौथा मरहला है। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि अल्लाह तबारक तआला या बंदों में से किसी का कोई हक ज़ाय हुआ है तो उसको भी अदा कर दिया जाए। अब अल्लाह तबारक तआला के हुकूक में एक तो है नमाज। आदमी जब बालिग होता है, बालिग होते उसके ऊपर नमाज क्या हो जाती है, फ़र्ज हो जाती है। गुसल की हाजत हो या 15 साल की उम्र पूरी हो तो आदमी बालिग कहलाता है। आप भी जब से बालिग हुए आप पर नमाज क्या हो गई, फ़र्ज हो गई। अब उस वक्त से लेकर आज तक बराबर तमाम नमाजें पाबंदी से पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई नमाज छूटी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, या छूटी थी लेकिन उसी वक्त आपने कज़ा कर ली तो भी बहुत अच्छा। और अगर नमाजें छूटी हुई हैं और अब तक कज़ा करने की नौबत नहीं आई तो यहाँ से उठकर जाने के बाद तन्हाई में बैठो, बैठकर सोचो, गौर करो, अंदाज़ा लगाओ कि आज तक हमारी कितनी नमाजें छूटी। ये गोया छूटी हुई नमाजों को अदा करने के लिए, उसकी कज़ा करने के लिए हमें पहले उसका एक अंदाज़ा लगाना है कितनी। यकीन के साथ मालूम है तो सुभान अल्लाह बहुत अच्छा, और अगर यकीन के साथ मालूम नहीं है तो एक अंदाज़ा, मोहतात अंदाज़ा जिसमें कुछ छूटने न पावे वो लगाना पड़ेगा आपको। तो और उसका तरीक़ा अभी आप बैत हो चुकने वालों को, बैत होने वालों को हिदायत के नाम से किताब चाहे बुकलेट वो भी आपको दी जाएगी, उसके अंदर उसकी तफसील तरीक़ा बताया है उसके मुताबिक। इसलिए कि अंदाज़ा लगाए बगैर आप जो हैं जो कज़ा शुरू करेंगे ना तो शैतान और नफ्स आपको धोखा देंगे। एक आदमी है बालिग 15 साल में हुआ, नमाज पढ़ना अभी शुरू किया नहीं, 25 साल की उम्र में अल्लाह ने हिदायत दी और नमाज का सिलसिला शुरू किया। तो अब गया 15 से लेकर 25 पूरे 10 साल तो ऐसे गुजरे हैं कि जिसमें उसने नमाज पढ़ी ही नहीं। अब फिर नमाज जब से पढ़ना शुरू किया उसमें भी जो है ऐसे हालात पेश आते रहे, अपनी तबीयत की सुस्ती की वजह से हर हफ्ते में फजर की एक दो नमाजें तो छूटती थी जिनको पढ़ने की नौबत नहीं आती थी, या जो है छुट्टी के दिन इधर उधर मटर गश्त और तफरी की वजह से मगरिब और इशा की नमाजें भी छूट जाती हैं हर हफ्ते में। तो अब एक तो 10 साल के तो ये कंटिन्यूज है, अब जब से पढ़ना शुरू किया था, आज मान लीजिए 25 साल की उम्र में शुरू किया था, 35 साल मजीद 10 साल हुए, इन 10 सालों में फिर ये जो बीच में टूट फूट वाला मसला है उसको भी अंदाज़ा लगाना है कि भाई हर हफ्ते में मेरी 2 फजर की नमाजें जाती थी। इस हिसाब से देखा जाए तो 10 साल के इतने हफ्ते और फिर 2 नमाजें तो जोड़ो, हर हफ्ते में मगरिब और इशा की घूमने फिरने में ये नमाज एक जाया करती थी। तो इस तरह सारी नमाजों का हिसाब लगा करके उसको लिख लो। अगर आप हिसाब नहीं लगाएंगे, अंदाज़ा नहीं करेंगे और वैसे ही कज़ा करना शुरू कर देंगे तो अभी जो है कज़ा का तरीक़ा आमतौर पर आदमी ये इख्तियार करता है कि वक्ती फ़र्ज नमाज जो होती है उसके साथ एक कज़ा कर लेता है, रोज़ाना फजर की नमाज के साथ एक फजर की कज़ा की, ज़ोर के साथ ज़ोर की कज़ा की। वैसे तो अगर फुर्सत है तो पहले ही फारिग हो जाना चाहिए, लेकिन खैर आमतौर पर ऐसा होता है। तो अब आप इस तरह करना शुरू किया, अभी 5-6 साल तक ऐसा किया और आपका नफ्स आपको कहेगा अरे हो गई कितने कज़ा तू तो करेगा। अब हालांकि आप अंदाज़ा लगा कि आपने नोट किया है 10 साल तो कंटिन्यू छूटी थी, तो अब 10 साल कंटिन्यू इस तरह रोज़ाना पढ़ेंगे तो वो 10 साल वाला हिसाब पूरा होगा, और वो अलग जो है दूसरा अलग से छूटी है वो तो अलग है। तो बहरहाल अंदाज़ा लगाना इसीलिए ज़रूरी है और उसके मुताबिक नोट भी करना है ताकि नफ्स और शैतान को धोखा देने का मौका न मिले। दरअसल ये मामला जो है अल्लाह के साथ है, वहाँ अल्लाह को हिसाब देना है। इसलिए किसी आदमी के ऊपर कोरट का समन हो और आप पर जो है ये कहा कि आपको इतनी रकम कोरट में क्या करनी है, अदा करनी है, वकीलों से जाके कोरट में आपको जो है रकम अदा करनी है, रकम की ये मकदार बताई नहीं गई थी उनकी तरफ से समन के अंदर, तो वो माहिरीन कानून वो कला के पास गया, कहा भाई ये समन आया, ये है, कुछ रकम कितनी देनी पड़ सकती है? किसी वकील ने कहा कि वो तो 2 लाख होगी, किसी ने कहा 3 लाख होगी, और किसी ने कहा 5 लाख होगी। अब आप बताओ कि जिस दिन कोर्ट में जाने का वक्त आएगा वो कितनी जेब में लेके जाएगा? 5, वो 2-3 वाली नहीं। एहतियात पर अमल करना है, समझे? वहाँ फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा अगर 5 पूरी मौजूद नहीं है। तो ऐसे ही अल्लाह के यहाँ जाना है हिसाब देने के लिए, तो वही मैंने कहा था मोहतात अंदाज़ा, इस तरह लगा करके वो पूरा ये कर लें। अगर जायद हो चुका है तो वो नफल में शुमार होकर आपके लिए सवाब का बाइस हुआ, लेकिन अगर कम रह गया है तो वहाँ जाने के बाद उसकी तलाफी की क्या शक्ल होगी? बाहर आप तो ये नमाज, अगर नमाजें छूटी हैं तो उसका अंदाज़ा लगाना है, वो और उस किताबचे में, उस बुकलेट में, उस पुस्तिका में वो तफसील बताई गई है। इसी तरह अल्लाह ताला का एक फरीज़ा आदमी के ऊपर रोज़े का भी है, जो हर एक पर है रोज़ा। बालिग होते ही रोज़ा फर्ज हो जाता है। आप जब से बालिग हुए, आज अगर आपके बालिग होने को 10 साल गुजर चुके हैं तो गया 10 रमज़ान आप पर गुजरे। इन 10 रमज़ानों में आपने कोई रोज़ा आपका छूटा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। या छूटा था कोई रोज़ा, वो आपने क्या कर लिया, हाथों हाथी कज़ा कर ली थी, तो बहुत अच्छा। और अगर रमज़ानों के रोज़े आपके क्या हुए हैं, छूटे हैं, आज तौबा की और 10 के 10 रमज़ान पूरे के पूरे ही छूटे हैं, तो सीधा हिसाब साफ है, 300 रोज़े आप पर हैं, नोट कर लो भाई, वो तो अदा करना है। और अगर कम हैं, भाई हर रमज़ान में 5-6 रोज़े मेरे छूटते थे, तो 10 रमज़ान और 6 रोज़े तो 60 लिख लो, 60 का आप कज़ा कर लो। वो मोहतात अंदाज़ा मैं बतलाना चाहता हूँ, वो भी नोट कर लो, उसकी कज़ा कर लो। नमाज की कज़ा के सिलसिले में इतना याद रहे कि वैसे तो वक्त पर जब हम पढ़ते हैं तो सुन्नतें होती हैं, फ़र्ज़ से पहले भी बाद में भी, कज़ा में इन नवाफिल और सुन्नतों की कज़ा नहीं, सिर्फ़ फ़र्ज़ की कज़ा है। बहरहाल अहले इल्म से मसाइल पूछ लें। यही हाल रोज़े का, यही हाल ज़कात का, अल्लाह ने माल और दौलत दी थी और जो है उसकी वजह से ज़कात भी देना फ़र्ज था, क़ुरबानी करना ज़रूरी था, सदक़तुल फ़ितर भी वाजिब था, लेकिन वो अब तक दिया नहीं। दिया हो तो बहुत अच्छा, नहीं दिया हो तो फिर उसका भी ये करना है। अब उसका अंदाज़ा तो क्या आप खुद लगा पाएंगे नहीं, मसाइल मालूम न होने की वजह से। इसलिए आपको ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप किसी माहिर तजर्बाकार मुफ्ती के पास जाएं और जाकर के उसके सामने अपनी माली हालत जो है पेश करेंगे, भाई इतना सोना, इतनी चांदी, इतना कैश रुपया और इतना तिजारत का सामान, यही 4 चीज़ें हैं जिनमें ज़कात आती है, मेरे पास इतने सालों से है, 10 साल से है और आज तक मैंने ज़कात अदा की नहीं है। वो आपने रख दिया, वो चार्ट रख दिया, मुफ्ती साहब को कहा मुफ्ती साहब बताओ मुझे अब मुझे कितना देना है, वो हिसाब करके आपको बता देंगे। इंशाल्लाह कोई फीस भी नहीं लेंगे आपको, वकील तो लेगा लेकिन ये नहीं लेंगे, बस आपको बता देंगे उनकी बताने के मुताबिक आपको क्या करना है, इतने सालों की ज़कात या क़ुरबानी वगैरह की तलाफी करनी है। हज अगर फ़र्ज हो चुका था और नहीं किया है तो वो भी करना है। ये तो अल्लाह ताला के हुकूक हुए, जिनमें हमसे कोताही हुई थी उसकी हमें क्या करनी है, तलाफ़ी करनी है, तलाफ़ी माफात। और बंदों के हुकूक में कोताही हुई है उसकी भी हमें तलाफ़ी करनी है। बंदों के हुकूक 2 तरह के हैं, जानी और माली। जानी का मतलब ये है कि हमने किसी को मारा, पीटा, गालियाँ दी, बुरा भला कहा, तोहमत लगाई, गीबत की, सताया, हमारी ज़ात से किसी को जिस्मानी या जहनी, शारीरिक या मानसिक तकलीफ़ पहुँची। जिसको भी तकलीफ़ पहुँची जब तक कि वो खुद माफ़ न करे वहाँ तक माफ़ होगा नहीं। उस अल्लाह ताला उसको, आप अल्लाह के हुजूर कितने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से अर्ज़ करें, यहाँ रातों में अल्लाह मैंने तो तेरे बंदों को बहुत सताया है, लोगों को मारा है, पैसे खाए हैं, माफ़ कर दे, तो बंदों का हक अल्लाह ताला माफ़ नहीं करते। एक मिसाल दिया करता हूँ, जैसे आपका कोई बड़ा बेटा है, उसके साथ किसी का कोई मामला हुआ और उसने उसको 2-4 तमाचे मारे, गालियाँ दे दी, अब उसके बाद वो आदमी आपके पास आया और कहा कि वो आपके बेटे को मैंने मारा है यार माफ़ कर दो, तो आप क्या कहेंगे? भाई उसको मार जाओ, उसके साथ मुझे मैं माफ़ कैसे करूँगा, जाओ उसे माफ़ करा। तो अल्लाह ताला भी बंदों का हक अल्लाह माफ़ करते, हालांकि वो बाख्तियार हैं, بندوں کے مالک ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا ہی بنایا ہے. تو بہرحال ایک تو یہ گویا جانی حقوق, اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اور ایک ہے مالی حقوق, کسی کے پاس سے ہم نے پیسے لیے, قرض کے طور پر لیے, چرا لیے, وہاں نوکری کرتے تھے اس کے گھر پر وہاں سے چوری کرتے رہے, یا چھین لیے کسی کے پاس سے, یا جو ہے پارٹنر تھا چپکے چپکے ہم لیتے رہے, اس کو پتا نہیں چلنے دیا, گڑبڑ کی اس کے ساتھ, یا ماں بھائی کا, بہن کا, پڑوسی کا کوئی مالی حق تھا جو ہم نے ادا نہیں کیا. بہت سے لوگ ماں باپ کے انتقال کے بعد ساری جائیداد لے کر بیٹھ جاتے ہیں, بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے, یہ سب مالی حقوق ہیں. تو بندوں کے حقوق دو طرح کے, جانی اور مالی. اب جو ہے ان کے اندر بھی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, تو اس توبہ کے واسطے اس کی بھی کیا کرنی ہے, ہم کو تلافی کرنی ہے. اب اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ بھائی جن بندوں کے حقوق میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے وہ پہلے متعین کریں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں, ہمارا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, ملنا جلنا ہے, اس لیے کہ عام طور پر یہ جانی یا مالی حقوق ایسے ہی لوگوں کے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آدمی کا ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا ہو. ایک اجنبی آدمی جس کے ساتھ کبھی اٹھنے بیٹھنے کی بھی نوبت نہیں آئی, بات چیت کی بھی نوبت نہیں آئی, عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی جانی یا مالی حق ہوتا نہیں. باقی اگر معلوم ہے کہ ہے تو اس کی تلافی کرنی ضروری ہے. بہرا تو بہرا یہ جو ہے جو ہمارے تعلق والے ہیں جن سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے وہ چار طرح کے ہیں. ایک تو ہیں رشتے دار, جیسے ماں باپ, پہلے ہی دن سے ان سے تو کیا پڑتا ہے, واسطہ پیدا ہوئے جب سے, اور بھائی بہن وہ بھی گھر ہی میں رہتے ہیں. ایسے ہی جو ہے دوسرے اجزاء جو ہیں چچا, خالہ, پھوپھی, ماموں, ان کی اولادیں, یہ ان سے عام طور پر آدمی کو واسطہ پڑتا ہے. تو جن جن رشتے داروں سے آپ کو اپنی زندگی میں ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا پڑا, واسطہ رہا, ان کے نام لکھو, اور وہ 5, 10, 15, 20, 25 جو بھی ہیں, کوئی 1000, 2000 ہونے کے نہیں, 50 بھی میں سمجھتا ہوں پورے نہیں ہوں گے, 15, 20, 25 پر معاملہ اٹک جائے گا. پہلے نام ان کے لکھ لو, ابا کا نام لکھو, امی کا نام لکھو, بھائیوں کا لکھو, بہنوں کا, ان کے ساتھ تو واسطہ پڑتا ہی ہے. باقی دوسرے, اور پھر دوسری قسم جن سے ہمارا ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, وہ ہمارے دوست اور احباب ہیں. ہمارا جو ہے وہ فرینڈ سرکل ہے, حلقہ احباب, ان کے ساتھ ان کے نام لکھو, آپ کے دوست جو ہیں اور پہلے تھے, ابھی دوستی رہی نہیں لیکن ان کے ساتھ ایک زمانے تک اٹھنا بیٹھنا رہا, تو ان کے بھی نام لکھو, جس لیے کہ ان کے بھی حقوق ہوں گے. دوبارہ یہ دوسری لسٹ ہوئی, وہ بھی کتنے ہوں گے, 5, 10, 15, 20, 25, 30 جو بھی ہیں. تیسرا محلے اور بستی کے لوگ جن کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی اور دوستی بھی نہیں تھی, لیکن محلے میں اور بستی میں ہونے کی وجہ سے ان سے جو ہے واسطہ پڑا, ان کے نام لکھو, وہ بھی 15, 20, 25, 50, 100. اور تیسرے جو ہے آپ کا جو کاروبار ہے, آپ دکان کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, اس تجارت کی وجہ سے جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, جہاں سے مال لاتے ہیں, جو آپ کے گاہک ہیں, یا آپ کسی اسکول کے اندر ٹیچر ہیں, پڑھاتے ہیں, آپ کے پاس پڑھنے والے آپ کے شاگرد, ہر سال ایک نئی جماعت آتی ہے, آپ کے ساتھ پڑھانے والے اساتذہ اور اسکول کا جو پورا عملہ اسٹاف ہے وہ انتظامیہ, اسی طرح کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں, کسی حکومت کے کسی شعبے میں آپ سروس کرتے ہیں, اور آپ کی اس سروس کی وجہ سے لوگوں سے کیا پڑتا ہے, واسطہ پڑتا ہے. کسی جو ہے کھاتے میں آپ آفیسر ہیں, لوگ اپنے کاموں کی وجہ سے آتے جاتے ہیں. تو بہرحال آپ کا جو مشغلہ ہے, اس مشغلے کی وجہ سے جن لوگوں سے ملنے کی نوبت آتی ہے. یہ ذرا لسٹ لمبی ہو سکتی ہے. آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور 50 سال سے پڑھا رہے ہیں, اور ہر سال جماعت کے اندر 50-100 لڑکے رہے ہیں, تو کتنی بڑی تعداد ہو جائے گی. تو ان کا بہرحال یہ چوتھی لسٹ. یہ چار لسٹیں پہلے تو ناموں کی بنا لو, اور ناموں کی لسٹیں بن جائیں, اس کے بعد پھر تنہائی میں جا کر کے بیٹھو, پہلی لسٹ کون سی تھی رشتے داروں کی, اس کو اٹھاؤ, اس میں پہلا نام لکھا تھا ابا کا, سوچو آج تک میں نے ابا کو کتنی تکلیفیں پہنچائی, ان کا دل دکھایا, ان کو ستایا, ان کی نافرمانیاں کی, سب یاد آئے گا, اور سب تفصیل سے. بعض واقعات تو زندگی میں ایسے پیش آتے ہیں ماں باپ کے ساتھ جو آدمی بھولتا نہیں ہے, اور بعض جو ہیں بھول جاتا ہے لیکن اجمالی طور پر یاد ہے कि कुछ हमने गड़बड़ें की है, एक शॉर्ट नोट मुख्तसर ये लिख दीजिए ताकि भाई मुझे उनसे क्या करना है, माफ़ी मांगनी है इंसान की। इसी तरह वालिदा का नाम दूसरे नंबर पर है, वहाँ भी भाई बहनों के नाम है। भाई बहनों को तो आमतौर पर आदमी कोई हैसियत भी नहीं देता, घर में एक साथ रहते हैं, लड़ने झगड़ने की मार पिटाई की नौबत आती है, गाली गलौज की नौबत आती है, माफ़ी भी नहीं मांगता। बल्कि कोई कहवे के माफ़ी मांगो तो उल्टा सामने जवाब क्या देता है, इससे क्या माफ़ी मांगनी है। गोया इसको तो इस लायक भी नहीं समझा कि उसके उससे माफ़ी मांगी जाए। दोबारा ये सब एक पहली लिस्ट हुई, कौन सी, हर एक के जानी हुकूक। किसी को हमने गाली दी थी, किसी पर तोहमत लगाई थी, किसी की गीबत की थी, किसी पर जो है मारा था, ये सब। इसी तरह दूसरी लिस्ट दोस्तों की, वो भी इसी तरह हर सोच का जो याद आए उसके नाम के सामने। तीसरी मोहल्ले और बस्ती वालों की, चौथी जो है आम जो कारोबारी लाइन से मिलना हुआ था अपनी मशगूली की वजह से। ये जानी हुकूक की एक लिस्ट तैयार हो गई। फिर इन्हीं लिस्टों को दोबारा चेक करना है वो माली हुकूक के लिए। पहली लिस्ट रिश्तेदारों की, भाई के पास से मैंने इतने पैसे लिए थे, आज तक दिए नहीं है, कर्ज के तौर पर लिए थे। बीवी के पास से जो है कारोबार में लॉस हुआ तो बीवी को जो है बहला फुसला करके कहा था तेरे जेवर लाद जरा बेच दें, फिर जब अपना कारोबार ठीक होगा तो दोबारा क्या कर दूंगा, बना दूंगा। ऐसा उसको पटापटू करके ले लिए जेवर, बेच डाले। अब कारोबार भी सब ठीक चल रहा है लेकिन जेवर बनाने का नाम नहीं। वो भी बेचारी डरती है कहने से कि इसको कुछ कहेंगे तो ये तो पिटाई करेगा। अब यहाँ तो आप पिटाई करके आपका हाथ ऊपर है लेकिन आखिरत का मामला बड़ा संगीन है, वहाँ कोई आपको बचा नहीं सकता है। इसलिए इस गलत फहमी में न रहे आदमी कि ये मेरा क्या बिगाड़ सकती है। तो बहरहाल बीवी का मामला, इसी तरह जो है माँ बाप हैं, बाप की जेब में से चुपके से कुछ रकमें निकाल ली, आमतौर पर बच्चे ऐसा करते हैं, वो भी याद हो तो उसको भी क्या कर लो, नोट कर लो, उसका भी खुलासा कर लो। किससे, अब्बा से, कि अब्बा मैंने ऐसा किया था। जाहिर अब्बा को पिटाई विटाई तो नहीं करेंगे, वो तो बेटा तेरे लिए तो सब कुछ करते हैं उसी वक्त। लेकिन अगर आपने तज़किरा नहीं किया तो उनको पता ही नहीं, तो माफ़ कैसे करेंगे। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि ये माली हुकूक रिश्तेदार, दूसरा नंबर किसका है, दोस्तों का, उनमें से भी हर एक के मुताबिक, तीसरा मोहल्ले और बस्ती वालों का, और ख़ास तौर पर जिनसे हमारे मामलात रहते हैं, लेन देन रहती है, जहाँ से हमारा की खरीदो फरोख्त रहती है, उनके तो ख़ास तौर पर सोचने की ज़रूरत है। बहुत से जो हैं वहाँ ये जो माफ़ी में भी इस तरह इजमाली माफ़ी नहीं चलती। हमें मालूम है कि इसके इतने पैसे बाकी हैं, फिर भी हज में जा रहे थे, भाई ज़रा लेन देन है तो माफ़ कर दीजिए हो तो। अरे जानता है कि इसके इतने बाकी हैं फिर भी ऐसी बातें करता है उल्टी सुलटी, ये नहीं चलता। हज़रत थानी अब्दुल्लाह फरमाते आपको बताना पड़ेगा कि भाई इतनी तेरी रकम बाकी है, अब तुम माफ़ कर दो चाहो तो रजा खुशी से, या फिर वसूल कर लो। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है, इसी तरह किसी की गीबत की है, किसी पर तोहमत लगाई है, तो कुछ हुआ हो, एक एहतमाली दर्जे का जुमला तो वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ यकीनी तौर पर मालूम, यकीनी मालूम हो तो वहाँ तो बताना ज़रूरी है। बल्कि आपकी गीबत की थी हज़रत थानी अब्दुल्लाह तो फरमा दें, वो पूछे क्या गीबत की थी तो बताना पड़ेगा। तो बहरहाल ये जो है ये सारी चीज़ें, ये जानी हुकूक, तो मैं समझाया कि नहीं, वो ये माली माली और जानी दोनों, बहरहाल दोनों की लिस्टें तैयार हो जाएं। अब ज़रा हिम्मत से काम लेना है। अब असल मरहला आया कि अब हर एक के पास जाना है, जानी हुकूक की क्या करनी है, माफ़ी मांगनी है। आपको गाली दी थी, अल्लाह वास्ते माफ़ कर दो, नहीं तो मैं मौजूद हूँ, आप क्या कर लो, गाली दे लो, बदला ले लो। तो आपको यूं सताया था, आपके ऊपर तोहमत लगाई थी। बहरहाल ये जानी हुकूक की माफ़ी और माली हुकूक अदा करो, और आज तक उसकी अदायगी में जो ताखीर हुई उसका उसकी क्या करो, माफ़ी मांगो। अब यानी लेट पेमेंट जो हुआ ना, वैसे इस्लाम में लेट पेमेंट के ऊपर कोई मजीद देना नहीं है, सूद नहीं है, लेकिन माफ़ी मांगना क्या है, ज़रूरी, उसका हक जो है हमारे हमसे ज़ाया हुआ। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि ये दोनों काम कर लोगे तो आपकी ये तौबा क्या होगी, मुकम्मल। ये अभी तौबा जो हुई एक इजमाली तौबा हुई, शॉर्ट। असल तौबा तो ये है कि हम इसके अमली तौर पर इसके सारे तकाजों को क्या कर लें, पूरा कर लें। कर लेंगे तो गोया उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी ज़िंदगी का हिसाब किताब क्या हो जाएगा, बिल्कुल साफ क्लियर कट हो जाएगा। बंदा या अल्लाह क्या कोई हक हमारे ऊपर बाकी नहीं अब तक की जिंदगी का। आइंदा आज से गुना यूं समझिए कि जिंदगी का एक नया बाप नया चैप्टर जो है शुरू हो रहा है। आप अब एक नई जिंदगी में कदम रख रहे हैं, तो अब आपको जो है पांचों वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करनी है। रमजान का महीना आवे तो उसके रोजे रखो। अल्लाह ने मालो दौलत दी है या आइंदा अल्लाह ताला दे तो उसकी जक़ात अदा करो, कुर्बानी करो, सदकतुल फितर दो, और हज की इस्तेदात हो तो हज करो। माली हुकूक भी बच्चों के माँ बाप के जो हैं वो अदा करो। किसी को हमारी जात से तकलीफ न पहुँचे, कोशिश यही हो कि हम इस तरह जिंदगी गुजारें कि हमारी जात से किसी अदना आदमी को भी तकलीफ पहुँचनी नहीं चाहिए। अपना हो, पराया हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, यहाँ तक के जानवर को भी तकलीफ पहुँचनी नहीं चाहिए। हदीस में आता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि दुनिया में अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा था, कयामत के रोज़ अल्लाह तआला अपने जो है शान अदल का इजहार यूँ फरमाएंगे, उसका बदला भी दिलवाएंगे। सींग वाली का सींग निकाल लेंगे, अल्लाह उस पर कादिर है। बगैर सींग वाली को सींग बिठा करके यूँ कहेंगे तुम मार के क्या कर लो, बदला ले लो। ये मामला किसके साथ होगा? जानवरों के साथ। उनके लिए शरीयत नहीं आई, शरीयत हमारे लिए आई। तो जानवरों के साथ भी अल्लाह ताला ये मामला करेंगे। हमने आपने अगर किसी को मारा है, किसी पर ज्यादती की है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, तो क्या अल्लाह मियाँ हमको छोड़ेंगे? नहीं, बदला दिलवाएंगे। और उनका बदला तो ये दिलवाया जैसा अभी कान के उसने मारा था, इसको कहा तुम मार ले, और उसके पास मारने का आला नहीं था तो उसको दिलवाया अल्लाह ताला ने। लेकिन हमारा बदला, हमने किसी को तमाचा मारा है तो कयामत में उसको यूं नहीं कहेंगे अल्लाह ताला के तू भी तमाचा मार ले। अगर ऐसा कहे तो बहुत अच्छा भाई, मार ले ना, एक के दो मार ले, मेरी नेकियां तो सलामत रहे। लेकिन नहीं, हमारा बदला यूं दिलवाया जाएगा कि उस तमाचे के बदले में हमारी नेकियां उसको दिलाएंगे अल्लाह ताला। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा से पूछा तुम मुफलिस किसको समझते हो? सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल हम तो मुफलिस और कंगाल उसको समझते हैं जिसके पास माल न हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो कयामत के रोज पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएगा, लेकिन किसी को मारा था, किसी को गाली दी थी, किसी पर तोहमत लगाई थी, किसी की गीबत की थी, किसी की जमीन दबा ली थी, किसी के पैसे खा लिए थे, वो सब हुकूक वाले जो हैं अल्लाह तआला से अर्ज करेंगे अल्लाह हमारा हक दिलवाओ। और वहाँ रुपया पैसा तो है नहीं, हुकूक जो हैं इसी तरह, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा इसकी नेकियों के जरिए से इसका हक अदा करो। वो जो लिस्ट बनी थी ना कई आदमियों की, अब हर एक को इसकी नेकियों के जरिए से हक दिया जा रहा है। हदीस में आता है कि इस तरह एक वक्त आएगा कि नेकियां ख़त्म और हक अभी सबके अदा। हक वाले तो 300 थे, 100 का हक अदा हुआ और नेकियां क्या हो गई? ख़त्म हो गई। अभी 200 बाकी रह गए। फरिश्ते बारी ताला से अर्ज करेंगे बारी ताला अभी तो 200 बाकी रह गए और इसकी नेकियां तो ख़त्म हो गई। तो बारी ताला फरमाएंगे अब दूसरा तरीका अपनाओ कि इसके पास नेकियां तो है नहीं कि उनको दें, हाँ उनके गुनाह हैं जो उनसे लेकर इसके सर पर डाल दिए जाएँ। गोया नेकियां दूसरे ले जाएंगे, दूसरों के गुनाह सर पे पड़ेंगे, जहन्नम में जाने की नौबत आ सकती है। अल्लाह ताला मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। ये हिफाजत उसी वक्त होगी जब हम इस बात का एहतमाम करें कि दुनिया में हमारी जात से किसी का कोई हक ज़ाया ना हो। तो ये गोया इस बात की कोशिश हो कि हमारी जात से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई तकलीफ ना पहुँचे। कुरान पाक की तिलावत अगर आप में से जो अबैत होने वाले हैं उनमें हाफिज़ हैं तो कम से कम 3 पारे। अब ये 3 पारों की तरतीब हमारे बुजुर्गों ने मुख्तलिफ बतलाई है। अगर कुरान पुख्ता याद है, माशाल्लाह इतना रवां है कि चलते फिरते आसानी से पढ़ सकता है, तो 3 पारे इसी तरह तरतीब से 1, 2, 3 आज फिर कल 4, 5, 6 इस तरह करता पढ़ता रहे। लेकिन अगर पुख्ता नहीं है तो उस सूरत के अंदर 1 पारे को 3 मरतबा या आधे पारे को 6 मरतबा जो 3 के बराबर हो जाएगा पढ़ सकता है, देख कर ही पढ़े वो तरतीब। उसके अंदर आसान ये है कि भाई आधा पारा 6 मरतबा देख कर। ये दौर जब पूरा हुआ, 2 महीने में पूरा होगा, फिर नया दौर शुरू करेगा, वहाँ भी आधा पारा 6 मरतबा लेकिन 5 मरतबा देख कर और 1 मरतबा ज़बानी। फिर 2 महीने पर पूरा होकर तीसरा दौर जब शुरू होगा तो वहाँ भी इसी तरह आधा पारा 6 मरतबा लेकिन 4 मरतबा देख कर 2 मरतबा। धीरे 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 एक वक्त आएगा इस तरह पढ़ने की वजह से उसका कुरान इतना पुख्ता हो जाएगा कि वह चलते फिरते उठते बैठते आसानी से कुरान की तिलावत। हाफिजों को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कुरान पाक जैसी नेमत अल्लाह ताला ने अता फरमाई, तो उनके रगो रिश्ते में वो क्या होनी चाहिए, व्यवस्थ होनी चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते उसका एहतमाम करें। खैर, और जो हाफिज नहीं है नाजरा खां हैं, तो वह एक पारा कम से कम, ये जो मैं बतला रहा हूँ जो है कम से कम मिकदार मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं। अगर कोई हाफिज ऐसा है मेरे इस बैत होने से पहले ही या बतलाने से पहले रोजाना 10 पारे, अब वो यूं ना सोचे कि मैं तो 10 पारे पढ़ता था, अब ये तो 3 कहे, अब मैं 10 के 3 कर लूं, ना ही, मैं 10 के 3 करने को नहीं कह रहा हूँ, तो जो नहीं पढ़ता है उसके लिए बात थी। तो आपकी मिकदार अपनी जगह पर बाकी रखी, ये कम से कम मिकदार है। इसी तरह कोई नाजरा खाएं रोजाना 2 या 3 पारों की तिलावत करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उसको बाकी रखे बढ़ावे। तो बहरहाल ये कम से कम मिकदार, ज्यादा की मेरी तरफ से कोई तहदीद, आप अपनी हैसियत के और वक्त और फरागत और अपनी ताकत के मुताबिक जितना ज्यादा तिलावत करेंगे बहुत अच्छा। ये तो कुरान की तिलावत हुई। तस्बीहात में 3 चीजें हैं, एक तो है तीसरा कलमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। फजाइल जिक्र आप तालीम में सुनते हैं, हदीस में जिन कलिमात की बड़ी फजीलत आई है, सुभान अल्लाह की ये फजीलत, अल्हम्दुलिल्लाह की ये फजीलत, ला इलाहा इल्लल्लाह की ये फजीलत, अल्लाहु अकबर की ये फजीलत, ला हौला वला, ये सारे कलिमात इसमें क्या कर दिए गए, जमा कर दिए गए। ये जो 5 कलमे बताए जाते हैं बचपन में सिखाते हैं मकतब के अंदर, ये 5 कलमे, कोई पूछेगा ये 5 कलमे कहाँ आए, तो ये दरअसल बुजुर्गों ने वो कलिमात जिनके मुख्तलिफ फजाइल अहादीस में आए हैं उनको याद करने के लिए एक तरकीब अपनाई है। तो बहरहाल ये तीसरा कलमा, तो तीसरे कलमे में ये सारे कलमात अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते हैं। तो अब ये तीसरा कलमा है, अल्लाह तबरक तआला की हम्द व सना तो हमें बयान करनी चाहिए, जिसका आदमी खावे उसके गुण गावे। तो बहरहाल हम सुबह और शाम अल्लाह का नाम लेने के लिए, एक तो ये तीसरा कलमा है, दूसरी चीज़ है दुरूद शरीफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर बड़े एहसानात, आपके सदक़े में अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया, और जो है अगर आप खुद न फरमाते तो भी आपके एहसानात का तकाजा ये था कि हम आप पर दुरूद भेजने का एहतमाम करते, के जाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद फरमाई मुझ पर दुरूद भेजो, और फिर आप पर दुरूद भेजना हमारे लिए फ़ायदे से खाली नहीं। हदीस में आता है मन सल्ला अलैहि गोया मेरे पर एक मरतबा दुरूद भेजेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। तुम्हारा दुरूद भी पढ़ना चाहिए। तीसरी चीज़ है इस्तिग़फ़ार, उठते बैठते चलते फिरते छोटे बड़े गुनाह हमसे हो ही जाते हैं, जैसे आदमी नहा धो करके रोजाना ऑफिस जाने के लिए नहा करके कपड़े बदल कर जाता है, शाम को आता है तो कोई बात तो है दो दिन के इससे, लेकिन आते हैं शाम को तो थोड़ा बहुत गर्दा वगैरह कपड़ों को लगेगा, कपड़ों को क्या कर देगा, झाड़ देगा ताकि वो लगा हुआ गर्दा और धूल उतर निकल जावे। ये इस्तिग़फ़ार जो है ना वो गुनाहों की धूल और गर्द जो लगा है उसको दूर करने। बाद लोग रोज़ाना गुसल करते हैं, कपड़े बदलते हैं, तो बहरहाल ये गोया अपने दिल पर गुनाहों के नतीजे के अंदर जो मैल आया है उसको दूर करने का तरीका है ये इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार के भी बहुत सारे कलेमात हैं, दुरूद शरीफ तो वो जो आप नमाज में पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिम, वो और भी जो दुरूद छोटा बड़ा आपको याद हो पढ़ सकते हैं, और इस्तिग़फ़ार के भी बहुत सारे कलेमात हैं, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु अल-हय्युल क़य्यूम वातूबु इलैह, या अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बिन वातूबु इलैह, या अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी, या रब्बी ग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, या कुछ नहीं तो खाली अस्तग़फिरुल्लाह, कुछ ज़्यादा नहीं आता तो इतना भी क्या है काफ़ी है। ये 3 चीज़ें हुई, तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार। रोज़ाना सुबह भी 100-100 मरतबा ये तीनों, और शाम को भी। सो पहले हमारे यहाँ तो मुतकदमी 300-300 का हिसाब था, लेकिन अब लोगों के अंदर कसल भी आ गया, मशगूलियतें भी बढ़ गई, तो अकाबिर ने जो है 100 का ही कहा कि 100, अब लोग 100 भी पूरा नहीं करते हैं कि वक्त तो नहीं मिलता। अरे भाई ये एक ज़हनियत बहुत ख़तरनाक है, क्या वह हम ही समझते हैं कि वक्त मिले तो ये करना है, नहीं मिले तो नहीं, नहीं ये तो करना ही करना है। वक्त किसी भी तरह उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि खाना है ना, खाना मिले तो खाएंगे वरना नहीं खाएंगे, नहीं खाना तो खाना है किसी भी तरह हासिल करेंगे। तो इसी तरीके से ये जो है इन तस्बीहात को सुबह और शाम सौ सौ मरतबा सुबह की तस्बीह आप जब से उठे हैं जब से लेकर दिन के 11 बजे तक सुबह साजिक से पहले भी पढ़ सकते हैं, कोई हैरत नहीं है कि नहीं। और सुबह साजिक के बाद तो कोई इश्काल बाकी नहीं रहता, 11 बजे तक जो है वैसे उसका बेहतर वक्त सुबह फजर की नमाज के बाद से लेकर तुलुए आफ्ताब तक है। चूंकि हदीस में इस वक्त में जिक्र की बड़ी फजीलत आई है इसलिए अगर इस वक्त पढ़ लें तो बहुत अच्छा, बाकी आगे पीछे कोई हरज नहीं। और एक जगह बैठकर भी पढ़ सकते हैं और चलते फिरते भी बैठकर पढ़ेंगे तो फायदा यकसुई की वजह से ज्यादा होगा, चलते फिरते पढ़ेंगे तो उतना नहीं होगा लेकिन सवाब दोनों सूरतों में यकसा मिलेगा। और शाम की तस्बीह असर से लेकर सोने तक पूरी कर सकते हैं, अलबत्ता असर और मगरिब के दरमियान का वक्त हदीस में उस वक्त में जिक्र की बड़ी फजीलत आई है इसलिए अगर उस वक्त कर लें तो बहुत अच्छा। ये भी चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, एक जगह बैठकर भी बेहतर तो यही है बैठकर पढ़ने की, फजर की नमाज के बाद निकलो ही मत मस्जिद, वहीं बैठे रहो और ये तस्बीहात पूरी कर ली तलावत कर ली ये सब से फारिग हुए वहाँ तक इशराक का वक्त भी हो जाएगा, दो चार रकात अल्लाह जो तौफीक दे पढ़ के फिर घर जाओ, चाहे तो कहीं जाने की नहीं कि वही गायब हो जाएगी कि भाई आप चाय नहीं मिलेगी, नहीं बल्कि आप इस तरह देर से जाते हैं तो घर वाले तो और ज़्यादा खिदमत करेंगे आपकी, समझाया कि नहीं। तो बहरहाल ये जो है ये इसका अहतमाम होना चाहिए। लोग कहते सो जा सो ना, ना नहीं है लेकिन सोने के लिए भी बेहतर ये है आदमी कि तुलू आफ्ताब के बाद फजर के बाद तुलू आफ्ताब से पहले जो है सोने को पसंद नहीं किया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ ले गए, हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा को सोया हुआ पाया, फुजू ने फरमाया ये तो अल्लाह के रिज्क के तकसीम होने का वक्त है, तुम इस वक्त सोती हो। तो हम गोया ये जो वक्त होता है इस वक्त में सो करके अपने रोजी के अंदर भी तंगी पैदा करते हैं, इसलिए सोना भी हो तो इशराक तुलू आफ्ताब के बाद सो, उससे पहले नहीं। खैर तो बहरहाल ये सुबह और शाम की तस्बीहात हुई, उसके अलावा 40 दुरूद ये रोज़ाना जो पढ़े जाते हैं ये छपे हुए हैं वो ले लेना और किसी भी वक्त में, मगर वक्त तय कर लो। एक बात याद रखो ये तमाम आमाल के लिए वक्त क्या होना चाहिए, तय होना चाहिए कि भाई ये 40 दुरूद मैं रोज़ाना ईशा के बाद पढ़ूंगा असर के बाद पढ़ूंगा। वक्त तय हो तो मुकर्रा वक्त में वो काम होता है, तय नहीं है आज असर बाद पढ़ा कल मगरिब बाद परसों ईशा बाद और तरसों गायब हो गया, ऐसा नहीं। वह एक वक्त तय, और वक्त भी ऐसा तय करो जो आपसे कोई छीन न सके। आप ऐसा वक्त है जिसमें लोगों के आने जाने का ये होता है, आपने कुरान की तिलावत के लिए जो है जोर के बाद का वक्त तय किया और आमतौर पर जोर के बाद लोग मिलने के लिए आते हैं, अब आप कुरान खोलकर बैठे ही रहे थे जो एक दोस्त आ गया अस्सलाम वालेकुम, अब आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि मेरी तिलावत वक्त है तुम जाओ बाद में आइयो, अब उसको जो है शर्मा हुजूरी में उसको था आपका इस्तकबाल भी करना पड़ेगा उसको उसका आपको, और फिर वो बात आध घंटा बैठ करके गया आप सोच रहे हैं कि तिलावत का जो 15-20 मिनट का वक्त था वो तो खत्म हो गया। नहीं वक्त भी ऐसा रखो सुबह रखे, सुबह कोई मिलने आएगा नहीं, सुबह घर वाले भी आपको नहीं कहेंगे ये चीज़ लाने की है, कोई किसी को आपसे बात करने की फुर्सत नहीं है उस वक्त, सब सुबह शादी से पहले सुबह शादी के बाद ये ऐसा उमदा वक्त है कि हमारे काम में कोई खलल डाल सकता, इसलिए आदत डालो तहज्जुद की कि तहज्जुद के लिए उठो आधा आधा घंटा पहले भी सुबह सादिक से अगर आप उठेंगे तहज्जुद पढ़ के दुआ और फिर उसके बाद तिलावत वगैरह करके माशाल्लाह बहुत आपको अल्लाह ताला जो है ऐसा तबीयत के अंदर ऐसा इंशिराह अता फरमाएंगे उसकी वजह से कि आपकी तबीयत हमेशा मुनशर रहेगी। जो लोग इस तरह इन बाबरकत अवकात में सोए रहते हैं उनकी तबीयत के ऊपर 24 घंटे सुस्ती काहिली कसला क्या रहता है गालिब रहता है, और हदीस में आया भी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शैतान 3 गिरहें लगाता है, आदमी जब उठता है और अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरह खुलती है, फिर वजू करता है तो दूसरी, और जब कुछ ये करता है नमाज पढ़ता है तो तीसरी, और फिर वो आदमी जो है नशीद है ना बिल्कुल एकदम जो है फ्रेश हो करके उसका पूरा दिन गुजरता है, जबकि ये अगर ये काम नहीं हुए तो गिरहें खुलती नहीं और उसकी वजह से उसकी तबीयत के अंदर निशात जो है आता नहीं है। तो बहरहाल उसका अहतमाम हो, ये मैं कह रहा था 40 दुरूद उसके लिए एक वक्त मुकर्रर हो। हिजबुल आज़म दुआ की किताब है, यहाँ आपने देखी होगी बहुत से अहबाब ने, तो बहरहाल ये यहीं से हासिल करके ले जाओ, उसके तर्जमे वाली भी उर्दू तर्जमे वाली भी मिलती है, اردو نہیں جانتے تو گجراتی والی بھی ملتی ہے، انگریزی والی بھی ملتی ہے، مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہیں، وہ ترجمے والی لے لو۔ عربی آپ تو جانتے نہیں تو اس صورت کے اندر اس کا دعا میں کیا مانگا گیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا، اور آدمی کو جب اس کا اندازہ ہوتا ہے دعا میں کیا مانگا جا رہا ہے سمجھ میں آتا ہے تو دعا میں بھی کیا لگتا ہے، جی لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دعا کرانے والا جب دعا کراتا ہے، قرآن و حدیث کی جو دعائیں قرآن میں آئی عربی کے اندر وہ کرتا ہے، تو ابھی آمین کی آواز آتی نہیں، اس لیے کہ عام طور پر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں پڑتی، حالانکہ ہیں تو وہ دعائیں قرآن کی حدیث پھر بھی، لیکن جب اردو میں شروع کیا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما تو کہا آمین، اور کہا رو اللہ روزی میں برکت دے آمین، آمین کا والیوم بھی بڑھ گیا۔ اپنی غرض کی بات آئی، کوئی بات نہیں، اپنی غرضیں بھی مانگو نا، مانگو تو صحیح، اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ بھی کیا ہے، عبادت ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ہم تو اس میں بھی کمزوری دکھلاتے ہیں، ہمیں یہ بھی توفیق نہیں ہوتی، اللہ اپنے اس بندے سے جو دعا نہیں کرتا کیا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو ساری دعاؤں کے طریقے بتلا دیے، اس کتاب کے اندر ایسی ایسی دعائیں ہیں، آپ کی بہت سی حاجتیں ہیں، آپ سوتے میں کیسے اللہ سے مانگوں، تو آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی دعا ایسی مل جائے گی جہاں آپ کا دل گواہی دے گا کہ ہاں مجھے جو اپنی جو حاجت مانگنی ہے اس کا یہ طریقہ ہے، آپ اس کو لازم پکڑ لیجئے۔ تو اس کو بہرحال یہ دعاؤں کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے اور دعا سیکھ آ بھی جاتی ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ بتلایا اور پھر بھی ہم سیکھتے، یہ مانگنے والے فقیر ہیں، آپ کے گھر محلوں میں آتے ہیں، ان کے پاس بنی بنائی کیسٹیں ہیں، یعنی بنی بنائی ان کے ذہن میں، سمجھا کہ نہیں، کوئی اس میں نہیں ہے، تو وہ آتے ہیں محلے میں جائیں گے، خاص انداز سے ان کا بیان کیا ہو جاتا ہے، چالو ہو جاتا ہے، حاجی صاحب آپ کا یوں بھلا ہو یوں ہو، انسانوں سے مانگنے کا تو طریقہ انہوں نے سیکھ لیا اور ہم نے اللہ سے مانگنے کا نہیں سیکھا، یہ بہت بڑی کمزوری کی بات ہے۔ اس لیے یہاں آئے ہو، یہاں یہ روزانہ دعائیں بھی سنتے ہیں، تو کچھ دعاؤں کا طریقہ بھی کیا کر لیجئے، سیکھ لیجئے۔ اور یہ الحزب العظم جو ہے اس کی ایک منزل، تو اس کے اندر تو ہیں دعائیں، ان میں سے کچھ دعائیں کیا کر لیں، یاد کر لیں۔ میں تو نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی آپ ایک ہفتے کے 7 دن میں ایک دعا اگر یاد کریں گے تو سال بھر کے 52 ہفتے آپ کو 52 دعائیں ایک سال میں یاد ہو جائیں گی، تو 2 سال میں 104 دعائیں، 3-4 سال میں تو پوری کتاب آپ کو زبانی یاد ہو سکتی ہے۔ میں کوئی پوری کتاب یاد کرنے کو نہیں کہتا، لیکن بارہ ایک معتد بھی مقدار کیا ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے۔ میں نے وہ قصہ سنایا تھا حضرت میاں سید خلیل حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کا، ہمارے ساتھی نے سنایا، مدینہ منورہ میں ایک آدمی جو ہے وہ حضرت کے پاس آ کر ظہر میں کہا حضرت میرے لیے دعا کرنا، پھر عصر میں آیا کہا حضرت میرے لیے دعا کرنا، پھر مغرب میں آیا کہتا ہے حضرت میرے لیے دعا کرنا، حضرت نے کہا ارے بھائی میں ہی سب کرتا رہوں گا، تو بھی کچھ کرے گا کہ نہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا اپنے لیے تو بھائی اپنی اپنی کرنی، اپنی اپنی بھرنی، دوسرا کتنا مانگ کر کے دے گا آپ کو، آپ کو خود ہی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے، رو رو کر کے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو ایک تو حزب العظم، اس کے علاوہ بھی آپ روزانہ 10-15 منٹ الگ سے نکالیے اور اس میں آپ کو 4 قسم کی دعائیں مانگنی ہیں۔ ایک تو اپنی حاجتیں، ہر آدمی صبح آپ کی جب آنکھ کھلتی ہے نا تو آنکھ کھلتے ہی دن بھر کا ایک نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے، آپ کو بچے کا فلاں جگہ ایڈمیشن کرانے کا ہے، بیوی بیمار ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جانا ہے، تیل بھی ختم ہو گیا ایک ڈبہ بھی لانے کا ہے اور پورے پیسے بھی نہیں ہیں، سمجھایا کہ نہیں، اور فلانے کے پاس اپنے پیسے نکلتے ہیں وہ بھی لینے کے لیے جانا ہے پتہ نہیں دیتا ہے کہ نہیں، کئی چیزیں دن بھر کی پوری زمین آنکھ میں آدمی کے دماغ میں کیا ہو جاتی ہے۔ اپنی ان حاجتوں کے لیے آدمی مختلف تدبیریں کرتا ہے، ہے نا، جن تدبیروں میں خود نہیں پہنچ پاتا دوسروں سے کیا لیتا ہے، مدد لیتا ہے۔ بیٹے کا ایڈمیشن کرانا ہے اور وہاں ہمارا نہیں چلتا تو ڈھونڈیں گے کہ بھائی وہ اس اسکول کا جو یہ ہے پرنسپال، ارے ہمارا فلانا دوست ہے اس کا خاص تعلق والا، تو آپ سیدھے دوست کے پاس جائیں گے، بھائی آج کام پڑا ہے اس کے ذرا سا ایک آدھ فون مار دو نا، یا چلو ہمارے ساتھ، سمجھا کہ نہیں، تو آپ جو ہے اس سے کیا کراتے ہیں، سفارش کراتے ہیں۔ تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ جس کا فیصلہ ہر جگہ ناطق، اس کی رضا، اس کی حکم کے بغیر کچھ ہوتا، ہمیں اس سے مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی، रोजाना सुबह को अपनी हाजतें पहले अल्लाह से मांगो, अपनी तदबीरें करो अपने वक्त पर। उन तदबीरों में तो उसी वक्त जाना आती है जब अल्लाह का उसके ऊपर फैसला हो। इसलिए अपनी हाजतें नंबर एक, जैसी हमारी हाजतें हैं ऐसी हमारे घर के, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे चचा, हमारे खाला, हमारे फूफी, ये हमारे रिश्तेदार जिनके साथ हमारा जो एक ताल्लुक़ है रिश्तेदारी का। अब हमें मालूम है कि हमारे भाई के बेटे का जो है ये मामला है, उसका एडमिशन नहीं हुआ है, हुआ कहा हुआ है, फलाना बेटा फारिग होकर के आया है स्कूल से और ये बन कर आया है, उसको जॉब नहीं मिला है, उसकी कोशिशें चल रही है। तो अब उनकी जो हाजतें हैं ना, उन्होंने चाहे आपको कहा हो, उन्होंने तो कहते भी हैं कि आप दुआ करना, और हम कहते हैं हाँ हाँ कहते हैं, लेकिन अपने लिए ही दुआ नहीं करते, उसके लिए कौन करता है। हाँ हाँ ऐसे झूठे वादे तो पता नहीं कितने करते होंगे हम। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि उसका एहतमाम हो अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने दोस्तों के लिए, उनका भी हक है, और पूरी उम्मत मुहम्मदिया के लिए चार किस्म की दुआएँ रोजाना 10-15 मिनट में रोज आदत डालो किसी मुकर्रा वक्त में। उसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं क्या फरमाएंगे, कबूल फरमाएंगे, आप मुस्तजाबुद दावात बनेंगे, दूसरे अल्लाह के बंदों के लिए दुआ करने का ये फ़ायदा है। तो बहरहाल ये अली हिज्बुल आज़म और दुआ किए, उसके अलावा हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी और सुन्नत और नफलों से फारिग होकर 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा इसकी भी आदत डालो, छूटना नहीं चाहिए किसी हालत के अंदर भी। और जो है वो और सोते वक्त भी पांच नमाजों के बाद 5 मरतबा और सोते वक्त, कुल 24 घंटे में 6 मरतबा ये तस्बीह फातिमी हमें पढ़नी है। सोने का जब इरादा करो तो सोने का जो तरीका शरीयत ने बतलाया हर काम का, हम जिन काम खाते हैं पीते हैं सोते हैं कज़ाए हाजत के लिए जाते हैं बाहर निकलते हैं अंदर जाते हैं, हर काम का एक तरीका हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और उस मौके की दुआएं भी बताएं। तो जिस काम का जो तरीका शरीयत ने हमें बताया, शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक, भाई खाने का तरीका शरीयत ने हमें कहा पहले क्या करो, हाथ धो, फिर दस्तरखान बिछाओ, खाना आया अब बिस्मिल्लाह पढ़ो, दाहिने हाथ से खाओ, इस तरह बैठ करके खाओ। तो अब देखो कुछ बातें करने की है, कुछ बातें जो है जबान से बोलने की है। ये सारे मजमुए का नाम क्या हुआ, आदाब। आदाब यानी गोया उस काम का वो तरीका जो शरीयत की निगाहों में क्या है, पसंदीदा है, उसके मुताबिक करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम अल्लाह के यहाँ क्या होगा, मकबूल होगा, अल्लाह की रजा और खुशनुदी का दरिया बनेगा। सोने में भी यही सोने के आदाब हैं, बावजू सोना चाहिए, सोने से पहले तस्बीह फातिमी, उससे फारिग होकर के जो है वो सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा का अव्वल व आखिर और चारों कुल बिस्मिल्लाह समेत पढ़कर दोनों हथेलियों पर दम करके अपने पूरे जिस्म के ऊपर फेर दिया जाए, और उसके बाद दाहिनी करवट पर दाएं रुखसार के नीचे दायां हाथ रखकर लेटें, दुआ भी पढ़ लें अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमुतवाहिया, और फिर जब सुबह आँख खुले तो फिर उस वक्त वो सीख जा। गोया हर चीज़ का जो तरीका हुजूर ने बताया उसके मुताबिक हमें काम करना है। उस वक्त हमारा खाना, हमारा सोना, हमारा पीना, हमारा कदाए हजरत के लिए बैतुल खला में जाना चूँकि सुन्नत तरीके के मुताबिक है, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, इबादत हमें करना है। ये तो करने की चीज़ें हुई। बचने की चीज़ों में जैसा कि अभी आपको बैत में कहा गया था, हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, हर गुनाह से अपने आप को बचाना है। ख़ास तौर पर चार गुनाह ऐसे हैं जो आजकल बकसरत वजूद में आते हैं, उनसे अगर आप अपने आप को बचाने का एहतमाम करेंगे तो इंशाल्लाह दूसरे गुनाहों से बचना क्या होगा। एक तो है बदनिगाही, ये बदनिगाही तो एक ऐसा आलमगीर और ऐसी ख़तरनाक बीमारी है, और ये मोबाइल और उसकी वजह से उसके अंदर जो इब्तिला इतना आम हो गया है, अल्लाह की पनाह। एक जैसे किसी अजनबी औरत को, जिंदा औरत को देखना हराम, ऐसे ही किसी अजनबी औरत की तस्वीर देखना वो भी क्या है, हराम। आप मोबाइल के अंदर लोग बैठे बैठे जो है घंटों लोग इसमें मशगूल रहते हैं, एक एक आदमी एक एक दिन के अंदर सैकड़ों मरतबा इस गुनाह का इर्तिकाब करता है। नतीजा क्या होता है, हमारी इबादतों के अंदर से जान निकल गई, ताअत का नूर क्या हो गया, सल्ब हो गया, और इबादत की जो लज्जतें हमें हासिल होनी चाहिए थी, अल्लाह ताला उस आदमी को अपनी इबादत की लज्जत से महरूम कर देता है। हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तिलावत करते हैं, लेकिन इन कामों में हमें जो मज़ा और लुत्फ़ आना चाहिए, लज्जत आनी चाहिए, वो आती नहीं। हमारी लज्जतों को ख़त्म कर दिया है। इस बदनिगाही से अपने आप को बचाने का अहतमाम करना है। दूसरा जो है बदज़बानी, ज़बान का गलत इस्तेमाल। बस जहाँ ज़रा वक्त मिला कुछ काम करने के बजाय आओ बैठें, ज़रा क्या करें, टाइम पास करें, आपस में बैठ के बातें चलती है। हमारी बातों में क्या होता है, कोई अल्लाह का जिक्र होता है, इसकी गिबत हो रही है, उस पर तोहमत लगाई जा रही है, उसका ठट्ठा किया जा रहा है, उसकी बुराई बयान की जा रही है। गोया ज़बान की हिफाजत बहुत अहम है। इस ज़बान की बेएहतियाती की वजह से भी दिलों के अंदर ऐसी जुल्मत और जो है कालापन आ जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। फजूल बात जिसमें कोई गुनाह नहीं, वो भी आपकी बिला ज़रूरत आप अपनी ज़बान से निकालेंगे ना, तो उससे आपको। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने अजीब मिसाल दी, एक कुंजड़ा है, कुंजड़ा यानी काच्छा गुजराती में जिसको कहते हैं सब्जी फरोश, तो वो यूँ कहता है ले लो सब्जी ले लो, उसका कारोबार है, सुबह से लेकर शाम तक 100 मरतबा भी ले लो सब्जी बोलेगा तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, उसको अपना गया कमाई के लिए। लेकिन हम ये भी बोलें ले लो सब्जी, एक मरतबा भी बोलेंगे तो उसकी वजह से हमारे कल्ब के अंदर क्या आएगी, जुमला। जो जुमला भी आप मिला ज़रूरत, चाहे वो गुनाह का जुमला ना हो, अगर बोलेंगे तो आपके कल्ब पर उसकी वजह से एक जुल्मत आती है। इसलिए इससे अपने आप को ख़ास बचाने का, बदज़बानी। और तीसरा बदगुमानी जो है ना, बदगुमानी और जो है लोगों के साथ हमारा मामला क्या होता है, और लोगों हर एक को हम देखते हैं, इनको देखा इसमें ये है, वे इसको देखा है, जिसको भी देखते हैं उसमें हमें क्या नज़र आता है, कोई ना कोई अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी लोग क्या हैं, बड़े बुजुर्ग हाँ है तो सही, ज़रा कमी है, ज़रा सही है। हर इसी में भी हमें जो है ऐसा हमें नज़र नहीं आएगा कि हमें कोई आदमी कामिल और मुकम्मल नज़र आते हो, बस अपनी ज़ात हमें अच्छी दिखती है। बड़ा मुबारक है वो बंदा अल्लाह का जो लोगों के ऐबों से आँखें बंद कर ले, अपने उयूब को देखे और उसको सुधारने की कोशिश करे, इसका अहतमाम होना चाहिए। ये बदगुमानी के सिलसिले को बंद करने का आसान तरीका यही है कि लोगों के हालात से हम वाकिफ ना हों, लोगों की तरफ ध्यान, कौन क्या करता है, इतने बड़े मजमे में आप बैठें, आप अपने काम में ऐसे मशगूल हों, कौन कब आया, किसके साथ मिला, कहाँ गया, किसके साथ बात की, आपको उसका पता ही होना, तो ध्यान ही मत दो। शुरू शुरू में ज़रा भारी मालूम होगा, दिल में बेचैनी होगी, उबाल आएगा, क्या हो, लेकिन सब्र करो, जब्त से काम लो, कुछ दिनों के अंदर ऐसा मिजाज बन जाएगा कि कोई आके बैठेगा ना तो उसकी तरफ भी मुंह करके देखने को जी नहीं चाहेगा। तो ये बदगुमानी से बचने का बेहतरीन तरीका है। और चौथा जो है हराम लुकमा। आजकल हराम तो इतना आम होता जा रहा है, अल्लाह हमारी आपकी हिफाजत फरमाए। लोग जरा भी बाकर जो है डर नहीं रखते हैं हराम को हासिल करने में, कि हराम लुकमा उसकी जो खराबियाँ, उससे जो ख़तरनाक याद पैदा होती है, आदमी जो अपनी ज़िंदगी, अपने बाल बच्चों की ज़िंदगी उससे बर्बाद होती है। आप चाहें कि आपकी औलाद नेक और साले बने, आपका घर सलाह के ऊपर कायम हो, तो उसका आसान तरीका यही है कि अपनी रोज़ी को, अपनी कमाई को हलाल बनाने का अहतमाम करें। हराम की ज़रा भी उसके अंदर शमूलियत और जो है वह शिरकत न हो। दोबारा हलाल हराम लुकमे से भी अपने आप को बचाना, कोशिश तो यही हो कोई गुनाह हमसे ना होने पाए, उसके बावजूद खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता कोई गुनाह हो गया, यानी कसदन नहीं किया। एक मोमिन के ईमान का तकाजा यह है कि वो कसदन बिल इरादा गुनाह नहीं करता, लेकिन गफलत की वजह से गुनाह हो गया तो फौरन तौबा करे, तौबा में देर न लगाए। ये शैतान जो है ना तौबा भी जल्दी करने देता नहीं है, हालांकि तौबा जैसा कि पहले मैं बतला चुका हूँ बड़ा आसान अमल है, और उसकी वजह से सब गुनाह क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। लेकिन बहरहाल कोशिश यही हो गुनाह ना हो, और खुदा ना खास्ता हो जाए तौबा का अहतमाम करें। बस ये है करने बचने की चीज़ें, और इस पर अमल का आसान तरीका यह है कि अपना माहौल, जो अच्छा माहौल, अच्छी कंपनी, अच्छे अहबाब, अच्छे लोगों के पास उठना बैठना। देखो आप यहाँ आए, यहाँ क्या है, यहाँ अल्लाह के नेक बंदे जमा हुए हैं और अल्लाह ही की बात, उस माहौल का असर है कि आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नफलें पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, आपका वक्त काम में लग रहा है, तो आदमी जैसा माहौल अपने लिए इख्तियार करता है वही असरात उसके अंदर आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अलमर औला दीन खलील ही फल यंजुर मैं खालिल हो, कि आदमी अपने दोस्त की गोया रविश पर होता है, देख ले किसके साथ दोस्ती करता है। अल्लाह के नेक बंदों के साथ हमारा ताल्लुक होना चाहिए, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे। ये सालिहीन की सोहबत जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप अपनी बस्ती में मालूम हो अल्लाह का नेक बंदा आया है तो वहाँ जाएं, भले आपकी बैत का ताल्लुक किसी से भी हो, उनसे गोया आप दीन की बातें सुनने के लिए उनकी खिदमत में हाजिरी दें, फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो ये सालिहीन की सोहबत और नेक माहौल ये बड़ा अहम है। यह दावत और तबलीग का सिलसिला जो जारी है अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी बस्ती में, अपने गाँव में, वहाँ भी हिस्सा लिया जाए। हमारे तलबा अहले इल्म बाद जो है फारिग हैं, कोई काम नहीं है, तो अभी वहाँ बैठने की जो है वो ये नहीं कर ज़रूरत नहीं समझती, ये बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, आपके इल्मी मशागिल ऐसे हैं कि वहाँ की वजह से आपके उन ऊँचे इल्मी मशागिल में खलल पड़ता है तो बात दूसरी है, ऐसा नहीं है तो फिर आप अपने आप को क्यों ज़ाया कर रहे हैं। हर जगह कोई ये सिलसिला है, वहाँ आप जुड़े रहें, उसका फ़ायदा ये होगा कि हर किस्म की बुराइयों से आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो बहरहाल अच्छा माहौल ये अमल का आसान तरीका है। हमारा ये सिलसिला जो है चिश्तिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, वैसे तो चिश्तिया और नक्शबंदिया दोनों मखलूत हैं, इसलिए कि हजरत हाजी साहब के जो पीर हैं मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब जंजानवी और उनके जो शेख हैं हाजी अब्दुलरहीम साहब विलायती, ये दोनों हजरत सैयद अहमद साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, हाजी साहब तो पूरी ज़िंदगी वहीं शहीद भी हुए और उन्होंने अपने जो है अपने इन खलीफा हजरत मियाँ जी साहब को बाकायदा बुलाकर हजरत सैयद साहब से बैत भी कराया था और उनसे इजाज़त और खिलाफत भी। गोया ये हमारा सिलसिला जो है ये चिश्तिया भी है और नक्शबंदिया भी है, वैसे चिश्तिया ही मारूफ है और हमारा काबिर भी उसको चिश्तिया से ताबीर करते हैं। तो बहरहाल ये जो है ये चिश्तिया सिलसिला है, वैसे तो तमाम चारों सिलसिलों में बैत किया जाता है बवक्त बैत, ताकि हर सिलसिले की कदर और जो है उसकी इज्जत आदमी के दिल में हो, किसी की कोई तौहीन न करने पाए। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला ने ये सआदत अता फरमाई है, अल्लाह ताला इस ताल्लुक को ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक बाकी रखे। सिलसिले के तमाम अकाबिर के साथ जो है अल्लाह ताला हमें एक ताल्लुक़ नसीब फरमाए, दुनिया में उनके नक्श कदम पर चलाए, आखिरत में अल्लाह ताला उनके साथ हमारा हश्र फरमाए, अल्लाह अपनी मर्जियात पर चलाए, नामर्जियात से बचाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मुकम्मल पैरवी नसीब फरमाए और अपने वक्त मौत पर अल्लाह ताला हम सबको ईमान के साथ दुनिया से उठावे। जो बैत हो चुके हैं उनको ताकीद की जाती है, ये जो बातें कही गई वो अरबी गुजराती में हिंदी में उर्दू में लिखी हुई हैं, वो हासिल कर लें। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।